नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह समारोह में ग्लोबल मैरिटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता की। कहा, भारत के बंदरगाह अब विकासशील देशों में सबसे कुशल बंदरगाहों में गिने जाते हैं। भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनें विकसित करने के लिए दो बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन सीमा मामलों को सुलझाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा तंत्रों को जारी रखने पर सहमत हुए। रूस ने पकड़ में नहीं आने वाले परमाणु क्षमता संपन्न अंडरवाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया और जमैका से गुजरने के बाद तूफान मेलिसा ने तेज हवाओं के साथ क्यूबा में दस्तक दी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 में समुद्री नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक समुद्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की समुद्री और जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2,20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि समुद्री क्षेत्र भारत के विकास को गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में इस क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिससे व्यापार और बंदरगाह बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र बहुत तेजी और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारत के नौवहन क्षेत्र में काम करने और विस्तार करने का सही समय है। सम्मेलन में नौवहन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाएं शुरू की गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौवहन क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन में 85 देशों के प्रतिभागियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
साथियों, मैं आप सभी का ग्लोबल मैरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में अभिनंदन करता हूं। साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई। आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहाँ इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत जहाज निर्माण में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के तेज प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सदी पुराने औपनिवेशिक नौवहन कानूनों को 21वीं सदी के लिए उपयुक्त आधुनिक और भविष्य के कानूनों से बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बंदरगाह आज विकासशील दुनिया में सबसे कुशल बंदरगाहों में गिने जाते हैं।
साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव बन गए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों ने इस वर्ष अब तक का सबसे अधिक माल वहन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत और नेपाल ने आज ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों के विकास के लिए दो समझौते किए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
ये समझौते भारत के पावर ग्रिड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच हुए हैं। इनमें नेपाल के इनारुआ से भारत के पूर्णिया तक 400 किलोवोल्ट और नेपाल के लम्की तथा डोडोधारा से भारत के बरेली तक 400 किलोवोल्ट पारेषण प्रणालियों का विकास शामिल है। नई दिल्ली में समारोह में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और नेपाल के ऊर्जा मंत्री कुलमन घिसिंग उपस्थित थे। दोनों समझौते इन उच्च क्षमता वाले विद्युत ट्रांसमिशन गलियारों को विकसित करने के लिए दोनों देशों में दो संयुक्त उद्यम संस्थाओं के गठन पर केंद्रित हैं। परियोजना पूरी होने के बाद दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, ग्रिड मजबूत होने और पूरे क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
नेपाल में आज नर्सों ने वेतन और भत्तों की समीक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन दो सप्ताह पहले पोखरा के मणिपाल अस्पताल और गंडकी अस्पताल से शुरू हुआ था। उनके समर्थन में पोखरा, विराटनगर, धनगढ़ी और काठमांडू में भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले की जांच के सिलसिले में अगले वर्ष 28 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। ये मामला ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय की यात्रा के दौरान हुए खर्चों से संबंधित है। फिलहाल जमानत पर रिहा श्री विक्रमसिंघे आज अपनी पत्नी के साथ अदालत में पेश हुए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सभी मुद्दों को हल करने के मौजूदा तंत्रों को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। ये निर्णय 25 अक्टूबर को चुशुल मोलदो सीमा चौकी पर भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 23वें दौर की बैठक में लिया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति कायम है। मंत्रालय के अनुसार ये वार्ता मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इन उद्देश्यों में बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार ने कहा है कि उसे थाईलैंड के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की जानकारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय नागरिकों ने म्यांमार से थाईलैंड में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड में विदेश मंत्रालय का मिशन थाईलैंड में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन नागरिकों को स्वदेश भेजने के लिए थाई अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की 5वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच जारी रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत नई पहलों पर विचार विमर्श किया गया। रूस ने अपने नए परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम अंडरवाटर ड्रोन पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने कहा है कि इसे रोक पाना असंभव है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा ब्यूरोवेस्टनिक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के कुछ ही दिनों बाद की है। इस कदम को यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पोसाइडन ड्रोन का कल पहली बार परमाणु ऊर्जा से परीक्षण किया गया। उन्होंने दावा किया कि पोसाइडन गति और गहराई के मामले में सभी वर्तमान प्रणालियों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि पोसाइडन को शक्ति प्रदान करने वाला परमाणु रिएक्टर पनडुब्बियों पर लगे रिएक्टरों से 100 गुना छोटा है। दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
तूफान मेलिसा आज क्यूबा पहुंच गया। आधुनिक इतिहास में इस द्वीप पर आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान के प्रभाव से 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके कारण क्यूबा में मूसलाधार बारिश हो रही है। मेलिसा तूफान से कैरेबियाई द्वीप पर अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 जमैका में, 3 हैती में और 1 व्यक्ति की डोमिनिक गणराज्य में मौत हुई। पूरे क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य जारी है। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराया। कप्तान लॉरा वोलवार्ट को 169 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 320 रन का लक्ष्य दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह समारोह में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता की। कहा, भारत के बंदरगाह अब विकासशील देशों में सबसे कुशल बंदरगाहों में गिने जाते हैं। भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और नई सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनें विकसित करने के लिए 2 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन सीमा मामलों को सुलझाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा तंत्रों को जारी रखने पर सहमत हुए। रूस ने पकड़ में नहीं आने वाले परमाणु क्षमता संपन्न अंडर वाटर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जमैका से गुजरने के बाद तूफान मेलिसा ने तेज हवाओं के साथ क्यूबा में दस्तक दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।